तकफीरी आतंकवाद।
श्रोताओं, कार्यक्रम तकफीरी आतंकवाद की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए।
पिछले कार्यक्रम में हमने ये बताया था कि सलफी मत में अनुसरण का क्या अर्थ है। अनुसरण के बारे में दो विचार पाए जाते हैं। इसका एक अर्थ तो यह है कि पैगंबर इस्लाम के काल में तथा उनके बाद जो सहाबी गुजरे हैं, हर क्षेत्र में और हर काम में उनका अनुसरण किया जाए तथा इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव को दिशा भेद और हराम माना जाए। यदि अनुसरण का ये अर्थ लिया जाता है तो फिर बड़ी समस्याएं पेश आएंगी। खुद सहाबियों ने जो कार्यशैली अपनाई है वो अनुसरण के इस अर्थ के विपरीत है, क्योंकि वो स्वयं भी पहले गुजर चुके सहाबियों का इस प्रकार अनुसरण नहीं करते थे। इस अंधे अनुसरण के बजाय अनुसरण की एक और शैली भी मौजूद है, ये इस्लामी सिद्धांतों और नियमों का अनुसरण है। इस्लाम धर्म ने इसके लिए तरीका निर्धारित कर दिया है। यदि अनुसरण का अर्थ दृष्टिगत है तो फिर ये पैगंबरे इस्लाम के साथियों का अनुसरण नहीं है, जिन्हें सलफ कहा जाता है, क्योंकि अनुसरण की ये शैली वास्तव में इस्लाम धर्म और उसके सिद्धांतों के अनुसरण की शैली है, जबकि सहाबियों का तौर तरीका इन्हीं सिद्धांतों का व्यवहारिक विवरण मात्र है।
किसी भी मत और विचारधारा की समीक्षा के संबंध में पहला कदम वो शैली है जिसे वो मत हकीकत तक पहुंचने और तथ्यों को समझने के लिए प्रयोग करता है। इसका अर्थ यह है कि अमुक मत ने धार्मिक तथ्यों तक पहुंचने के लिए उस शैली को मान्यता दी हो। इसके लिए चार प्रकार की शैलियां हो सकती हैं। हकीकत के ज्ञान के लिए पहला रास्ता है बुद्धि। बुद्धि के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। इंसान अक्ल की मदद से बहुत से तथ्यों को समझ पाता है। धार्मिक पुस्तकों में बुद्धि को हकीकत की पहचान के माध्यम के रूप में मान्यता दी गई है। कुरान ने बार बार बुद्धि से काम लेने और चिंतन करने पर बल दिया है। अक्ल का शब्द अलग अलग रूपों में कुरान में 43 स्थानों पर दोहराया गया है। कुरान खुद भी कभी हकीकत को समझाने के लिए अक्ल का प्रयोग करने का निमंत्रण देता है। जैसे एक शुरुआत को समझाने के लिए सूर्य अंबिया की आयत क्रमांक 22 में कहा गया है कि अगर आकाश और ज़मीन में दो ईश्वर होते तो ये विनष्ट हो जाते। कुछ आयतें चिंतन मनन की बात करती हैं, जैसे सूर्य जोमर की आयत संख्या 17 और 18 में ईश्वर ने कहा है कि हे पैगंबर, उन बंदों को शुभ सूचना दे जो बातें सुनते हैं और फिर उनमें बेहतरीन बात का अनुसरण करते हैं, वो मार्गदर्शित और बुद्धिमान लोग हैं। कुछ आयतों में बुद्धि की बात न मानने के बुरे अंजाम की ओर से सचेत किया गया है। सूरह मुल्क की आयत संख्या 10 में उन लोगों की बात की गई है जो नरक में डाल दिए जाएंगे और वहां कहेंगे कि यदि हमने सुना होता या चिंतन मनन किया होता तो जहन्नम में न डाले जाते।
असल में इस्लाम की दृष्टि में बुद्धि को बहुत अधिक महत्व दिया जाना बहुत स्पष्ट है। इस संदर्भ में मतभेद वहां पर शुरू होता है जहां बुद्धि को प्रयोग करने की सीमा की बात होती है और ये कि बुद्धि के फैसलों पर कहां तक भरोसा किया जा सकता है। इस बिंदु पर पहुंचकर अलग अलग मतों ने अलग अलग विचार पेश किए हैं। कुछ मत अति का शिकार दिखाई देते हैं। एक और मोतजिमा नामक मत ये कहता है कि धार्मिक तथ्यों को समझने और परखने का एक ही मार्ग अक्ल है। हालांकि धर्म के कई आयाम हैं, जहां एक आयाम उपासना से संबंधित है वहीं दूसरा आयाम दर्शन और तर्क वितर्क से जुड़ा हुआ है। बंदगी और अलौकिक चीज़ों वाला आयाम केवल बुद्धि के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, जैसे 30 दिन रोज़ा रखना, जोहर की नमाज का 4 रकत होना आदि। दूसरी ओर एक मत ऐसा है जो कहता है कि अक्ल धार्मिक मामलों में बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। ये मत भी कुरान की आयतों में दी जाने वाली शिक्षाओं से टकराव रखता है। इस्लाम में ये कहा गया है कि बुद्धि के प्रयोग और उसके फैसलों पर भरोसा करने के मामले में मध्यमार्गी बनना चाहिए, अर्थात धर्म के अलग अलग विषयों की दर्जाबंदी करने की ज़रूरत है। जहाँ अकीदे और मूल सिद्धांतों की बात है तो उनके संदर्भ में बुद्धि का प्रयोग ज़रूरी है, जबकि धर्म के कुछ आयाम ऐसे हैं जिन्हें अक्ल नहीं समझ सकती। उनके संदर्भ में बस ये देखना होगा कि ईश्वर ने और उसके दूत ने क्या कहा है और किस प्रकार अंजाम देने का आदेश दिया है। इसका उदाहरण बहुत से धार्मिक आदेश हैं, प्रलय के दिन पेश आने वाली घटनाएं हैं।
बुद्धि के बाद दूसरा रास्ता यही है कि ईश्वरीय दूत की जीवनी को देखा जाए और उसी के अनुसार अमल किया जाए। कुछ धार्मिक मामले ऐसे हैं जो बुद्धि से साबित नहीं किए जा सकते, जैसे पैगंबर इस्लाम और उनके परिजनों की जीवन शैली को आने वाली पीढ़ियों तक स्थानांतरित करना है। इसके लिए लिखना और बयान करना ही एकमात्र रास्ता है। पैगंबर इस्लाम की जीवनी और कथनों को स्थानांतरित करने का रास्ता यही है। इसे भी सभी इस्लामी मत मानते हैं, लेकिन कहाँ तक इसे मान्यता दी जाए और इसकी क्या शर्तें हो, इस बारे में मतभेद है। पैगंबर इस्लाम की जीवन शैली को बयान करने के संबंध में दो शैलियाँ हैं। एक शैली यह है कि कोई एक व्यक्ति जीवन शैली या किसी घटना को बयान करे, और दूसरा रास्ता यह है कि बहुत सारे लोग एक घटना को बयान करें।
धार्मिक तथ्यों को समझने का तीसरा रास्ता आध्यात्मिक है। ये रास्ता सबसे विश्वसनीय है, लेकिन सबके लिए इस उच्च चरण तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए आत्मा की पवित्रता बहुत ज़रूरी है। इस शैली को प्राप्त करने वाले लोगों का कहना है कि बुद्धि बहुत से तथ्यों को समझने में असमर्थ है, जबकि कुछ का कहना है कि बुद्धि केवल एक सीमा तक ही इन मामलों में काम कर पाती है। बहरहाल ये शैली केवल उस व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है जो आत्मा की पवित्रता के कारण उस महान स्थान तक पहुंच चुका है। यही कारण है कि ये रास्ता औलिया से विशेष है। तथ्यों को जानने का चौथा रास्ता है प्रयोग और परीक्षण। ये रास्ता भौतिक चीज़ों में काम आता है जिन्हें इंद्रियों से महसूस किया जा सकता है। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने सामाजिक मामलों के लिए भी प्रयोग और परीक्षण की शैली पर बहुत काम किया है,
लेकिन सच्चाई ये है कि ये शैली केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही परिणामदायक साबित हुई है। आध्यात्मिक और अलौकिक विषयों में इसकी उपयोगिता नहीं है। मुस्लिम विद्वानों ने धार्मिक विषयों को समझने और परखने के लिए वली और अल्लाह के खास बंदों के आध्यात्मिक शैली के अलावा, जो उन्हीं विशेष बंदों तक सीमित रहती है, दो और तरीके निर्धारित किए हैं, और एक दूसरे का सुधार भी होता रहता है। इन दोनों में किस तरीके को प्राथमिकता हासिल है और इन तरीकों की सीमाएं क्या हैं, इस बारे में मुसलमानों में अलग अलग विचार पाए जाते हैं। एक तरीका अक्ल का है और दूसरा तरीका पैगंबर इस्लाम और उनके परिजनों के कथनों और उनकी जीवन शैली के अनुसरण का है। इन दोनों तरीकों की मदद से तथ्यों को समझा जाता है। सलफी विचारधारा के लोग अक्ल को पूरी तरह खारिज कर देते हैं। उनका कहना है कि धार्मिक मामलों में केवल हदीसों का ही सहारा लेना चाहिए और उसी पर अमल करना चाहिए। सलफी मत की यही चीज़ दूसरे मुसलमानों से अलग है कि वो हदीस और रवायत के मामले में अक्ल का प्रयोग किए जाने के विरोधी हैं। वो ये भी नहीं देखना चाहते कि जो हदीस सामने है उसे नकल करने वाले इतिहासकारों में कौन लोग हैं, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो विश्वसनीय न हो।
सलफी विचारधारा के बारे में एक महत्वपूर्ण बहस यही है कि वो तथ्यों को समझने के लिए जिस शैली का प्रयोग करते हैं उस शैली की कितनी विश्वसनीयता है, उस शैली में गलतियों की संभावना कितनी है। तथ्यों के संबंध में सलफी मत के स्रोत क्या हैं, अपनी इस शैली की मदद से सलफी किस सीमा तक सफल हो चुके हैं। दूसरी बहस इस संबंध में ये है कि जो तरीका सलफी मत ने तथ्यों को समझने और प्राप्त करने का अपनाया है उस बारे में इस्लाम क्या चाहता है। ये बहस इसलिए ज़रूरी है कि ज्ञान प्राप्ति और तथ्यों को समझने की अलग अलग शैलियों के अलग अलग परिणाम और गंतव्य होते हैं। उदाहरण स्वरूप, अधिक केवल आँखों से दुनिया को देखा जाए तो इंसान किसी एक परिणाम तक पहुँचेगा, लेकिन यदि उसने मन और बुद्धि का प्रयोग किया, चिंतन मनन का सहारा लिया, तो इंसान कुछ और परिणामों तक पहुँचेगा। तथ्यों को समझने के लिए जिस प्रकार की शैली प्रयोग की जाती है उसी प्रवृत्ति के परिणाम भी सामने आते हैं।